एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जा रहे हैं जो दिमाग को हिला देती है। ये कहानी है भरोसे की, धोखे की, और कैसे एक शख्स ने दुनिया की सबसे चौकस मानी जाने वाली वित्तीय व्यवस्था को सालों तक चकमा दिया।
हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्नी मैडोफ की।
बिल्कुल, और हमारे सफर का गाइड है डायना हेंड्रिक्स की किताब द विज़र्ड ऑफ लाइज, बर्नी मैडोफ एंड द डेथ ऑफ ट्रस्ट। आज हम इसी किताब के जरिए मैडोफ के इस पूरे मायाजाल को समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल, और देखिए, बर्नी मैडोफ कोई एरा गैरा फ्रॉड नहीं था। वो वॉल स्ट्रीट का एक बहुत बड़ा नाम था, नैसडैक स्टॉक एक्सचेंज का पूर्व चेयरमैन, सोचिए।
हाँ, नैसडैक का चेयरमैन,
और उसी आदमी ने इतिहास का सबसे बड़ा पोंजी घोटाला किया, करीब करीब $65 अरब का। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये भरोसे के टूटने की कहानी है। कैसे एक इतना कामयाब दिखने वाला इंसान इतना बड़ा धोखा दे सकता है।
और कमाल की बात ये है, जैसा आपने बताया, डायना हेंड्रिक्स जो न्यूयॉर्क टाइम्स की जानी मानी रिपोर्टर है,
नहीं,
उन्होंने न सिर्फ इस पूरे घोटाले को शुरू से कवर किया,
हाँ,
बल्कि उन्हें मैडोफ का जेल में इंटरव्यू करने का भी मौका मिला। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो उनकी किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ,
नहीं,
बल्कि ये समझने की कोशिश करती है कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। मतलब कैसे एक आदमी इतने सारे लोगों को, वो भी इतने सालों तक, अंधेरे में रख पाया।
और यही यही वो सवाल है जो आज हमारी बातचीत के दिल में है। ये सब हुआ कैसे, और मैडोफ की कहानी आज भी हमारे लिए इतनी अहम क्यों है? इससे हम भरोसे के बारे में, सिस्टम की खामियों के बारे में, और हाँ, इंसान के मन के बारे में क्या सीख सकते हैं।
सही कहा, ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। बर्नी मैडोफ की कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, बैकग्राउंड क्या था उनका?
देखिए, कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके से 1938 में। एक साधारण सा यहूदी परिवार था। उनके माता पिता पूर्वी यूरोप से आए थे, अप्रवासी थे, और वो अमेरिकन ड्रीम, मतलब कड़ी मेहनत से आगे बढ़ने का सपना देख रहे थे।
अच्छा।
पिता प्लम्बर थे, माँ घर संभालती थी, हालांकि बाद में दोनों ने सिक्योरिटीज ट्रेडिंग, मतलब शेयर बाजार के काम में भी हाथ आजमाया।
ओह, तो फाइनेंस से थोड़ा नाता पहले से था।
हाँ, और एक दिलचस्प बात यह भी है कि 1963 में मैडोफ की माँ पर SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने जांच भी की थी, रिकॉर्ड वगैरह ठीक से ना रखने के लिए। खैर, वो मामला तो रफा दफा हो गया। पर शायद यहीं से बर्नी को सिस्टम की थोड़ी नब्ज, उसकी कमजोरियां और मौके दोनों का अंदाजा होने लगा होगा।
और बर्नी खुद कैसे थे बचपन में? क्या शुरू से ही तेज थे?
हाँ, बचपन से ही काफी महत्वाकांक्षी और आकर्षक व्यक्तित्व वाले थे। लोग खिंचे चले आते थे। क्वींस के लॉरेल्टन जैसे मिडिल क्लास इलाके में पले बढ़े, जहां आगे बढ़ने की एक होड़ सी रहती थी। बर्नी ने शायद जल्दी समझ लिया था कि अच्छी जान पहचान, अच्छा दिखना, ये सब कितना जरूरी है।
और पढ़ाई?
उन्होंने हॉफ्स्टर यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली, और वहीं उनकी मुलाकात रूथ एल्पर्न से हुई,
जो बाद में उनकी पत्नी बनी।
हाँ, और सिर्फ पत्नी ही नहीं, उनकी बिजनेस और सोशल लाइफ में एक बहुत अहम पार्टनर भी साबित हुई।
और फिर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, वो भी सिर्फ $5,000 से।
हाँ बिल्कुल, महज $5,000, जो उन्होंने गर्मियों में लाइफगार्ड की नौकरी करके और वो लॉन में पानी के स्प्रिंकलर लगाने का काम करके कमाए थे।
कमाल है।
1960 की बात है ये, तब उन्होंने अपनी फर्म खोली, बर्नार्ड एल मैडोफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज।
सिर्फ 22 साल की उम्र में?
हाँ, 22 साल की उम्र है। शुरुआत तो छोटे मोटे शेयरों से की, जिन्हें पेनी स्टॉक कहते हैं। लेकिन बर्नी ने वक्त को पहचाना, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की अहमियत समझी।
अच्छा, उस जमाने में?
हाँ, उस जमाने में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग को तेज और सस्ता बनाया। ये वॉल स्ट्रीट में तब नई बात थी, और इसी वजह से उनकी फर्म BMIS काफी कामयाब हुई। वो मार्केट मेकिंग के बड़े खिलाड़ी बन गए।
मार्केट मेकिंग, ये क्या होता है आसान भाषा में?
मार्केट मेकिंग मतलब खरीदार और बेचने वालों के बीच सौदा पक्का करवाना। समझिए कि वो बाजार में शेयरों की खरीद फरोख्त को आसान बनाते थे, जिससे बाजार में लिक्विडिटी, मतलब तरलता, बनी रहती थी। ये उनका एकदम लीगल कामयाब बिजनेस था।
और इसी कामयाबी के दम पर वो नैसडैक तक पहुंचे?
हाँ बिल्कुल, वो नैसडैक स्टॉक मार्केट को बनाने वालों में से थे, और सिर्फ बनाने वालों में नहीं, बल्कि 3 बार उसके चेयरमैन भी रहे, 1990, 91 और 93 में।
3 बार?
हाँ, जरा सोचिए कितनी बड़ी इज्जत, कितनी विश्वसनीयता रही होगी उनकी।
यही तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है। एक तरफ इतनी सफलता, इतनी इज्जत, और दूसरी तरफ
उसी इज्जत की चादर के नीचे इतिहास का सबसे बड़ा धोखा धीरे धीरे पनप रहा था। माना जाता है कि 1990 के दशक की शुरुआत में ही उनका वो पोंजी घोटाला शुरू हो गया था।
90 के दशक में ही?
हाँ, हो सकता है शुरुआत छोटी रही हो, शायद ट्रेडिंग में कुछ नुकसान हुआ हो और उसे छुपाने के लिए उन्होंने क्लाइंट के पैसों का इस्तेमाल कर लिया हो, ये सोचकर के बाद में वापस कर देंगे। लेकिन ये जल्दी एक बड़े, मतलब बहुत बड़े सुनियोजित धोखे में बदल गया। उन्होंने एक पूरी कहानी गढ़ी, एक काल्पनिक निवेश रणनीति, नाम दिया स्प्लिट स्ट्राइक कन्वर्जन।
सुनने में तो बड़ा टेक्निकल और सुरक्षित सा लगता है ये नाम, स्प्लिट स्ट्राइक कन्वर्जन। असल में था क्या ये?
असल में ये कुछ भी नहीं था, हवा हवाई। बस एक नाम था जो सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत सेफ लगता था। दावा ये था कि वो स्टॉक्स और ऑप्शंस को इस तरह मिलाते हैं कि बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे, रिटर्न पक्का और लगातार मिलेगा।
गारंटीड रिटर्न जैसा कुछ?
हाँ, लगभग वैसा ही। जबकि असलियत ये थी कि मैडॉफ कोई खास ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे थे, वो बस नए निवेशकों से पैसा लेते थे और उसी पैसे से पुराने निवेशकों को उनका रिटर्न दे देते थे। एक क्लासिक पोंजी स्कीम।
और ये चलता रहा सालों साल,
दशकों तक। जब तक नए पैसे का फ्लो पुराने भुगतानों से ज्यादा रहा, तब तक स्कीम चलती रही।
और इस दौरान वो और उनकी पत्नी रूथ बहुत अमीर हो गए होंगे। मैनहट्टन में पेंटहाउस, हैम्पटन्स में घर, पाम बीच में।
हाँ हाँ, जबरदस्त लाइफस्टाइल, बड़े बड़े घरों, प्राइवेट जेट, यॉट, महंगी पार्टियां, चैरिटी में बड़ा नाम। और उनका जो निवेश सलाहकार वाला बिजनेस था ना, उसे बहुत खास, बहुत एक्सक्लूसिव माना जाता था। हर कोई उसमें पैसा लगाना चाहता था, लेकिन एंट्री आसानी से नहीं मिलती थी।
जैसे कोई वीआईपी क्लब हो।
बिल्कुल, और यही उनकी चाल का हिस्सा था। ये जो एक्सक्लूसिविटी थी, ये खास होने का एहसास, इसने लोगों के मन में और ज्यादा इच्छा जगाई।
लेकिन फिर आया 2008 का वित्तीय संकट।
हाँ, और वही उनके इस कांच के महल के ढहने का कारण बना। जब दुनिया भर के बाजार गिरने लगे तो निवेशक घबरा गए। उन्होंने मैडॉफ से अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। और ये रकम छोटी मोटी नहीं थी, करीब $7 अरब।
$7 अरब?
हाँ, अब पोंजी स्कीम का जो गणित है वो सामने आ गया। जब पैसा निकालने वाले ज्यादा हो गए और नया पैसा आना लगभग बंद हो गया, तो मैडॉफ के पास देने के लिए पैसे ही नहीं बचे।
तब क्या हुआ, वो पकड़े कैसे गए?
दिसंबर 2008 की बात है, जब वो निवेशकों के पैसे लौटाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं रहे, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने अपने बेटों मार्क और एंड्रू को बुलाया और उनके सामने सच उगा दिया।
अपने बेटों के सामने?
हाँ, उन्होंने कहा कि उनका ये जो पूरा निवेश सलाहकार वाला काम है, ये सब एक बड़ा झूठ है। असल में ये एक बहुत बड़ी पोंजी स्कीम है।
ये तो उनके बेटों के लिए कितना बड़ा शौक रहा होगा, वो तो उनकी फर्म के लीगल हिस्से में काम करते थे ना, है ना?
हाँ, वो लोग फर्म के मार्केट मेकिंग वाले हिस्से में थे जो कानूनी था। उन्हें इस धोखे की बिल्कुल भनक नहीं थी। जाहिर है वो स्तब्ध रह गए और उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा। उन्होंने फौरन अपने वकीलों से संपर्क किया और फिर अधिकारियों को इत्तला दी।
बेटों ने पिता को पकड़वा दिया?
हाँ, अगले ही दिन FBI ने बर्नी मैडॉफ को उनके मैनहट्टन अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया। उन पर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, झूठे दस्तावेज बनाने जैसे कई गंभीर आरोप लगे। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
और सजा?
सजा मिली 150 साल की जेल, जो कि उनके अपराधों की गंभीरता को देखते हुए थी। और अप्रैल 2021 में 82 साल की उम्र में जेल में ही उनकी मौत हो गई। तो उनकी विरासत देखिए दोहरी है। एक तरफ वो बाजार में नई तकनीक लाने वाले इनोवेटर थे और दूसरी तरफ इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय धोखेबाज।
इस पूरी कहानी को अगर हम देखें तो मैडॉफ के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? हेनरिश की किताब उनके मोटिवेशन, उनके नजरिए के बारे में क्या कहती है? क्या ये सिर्फ पैसों का लालच था या कुछ और भी था?
हेनरिक्स की किताब बताती है कि मामला सिर्फ लालच का नहीं था। हाँ, पैसा जरूर एक बड़ा फैक्टर था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बर्नी को तारीफ की, कंट्रोल की और समाज में एक ऊंचा रुतबा पाने की, मतलब एक खास पहचान बनाने की गहरी भूख थी।
इज्जत और रुतबे की भूख।
हाँ, उनका फलसफा, उनकी फिलॉसफी ये थी कि असलियत से ज्यादा दिखावा मायने रखता है। दुनिया की नजरों में वो एक बेहद कामयाब, इज्जतदार, जीनियस इन्वेस्टर बने रहना चाहते थे, भले ही अंदर से सब कुछ खोखला हो। इमेज उनके लिए सब कुछ थी।
यानी बाहरी दिखावा बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और भरोसे का इस्तेमाल उन्होंने कैसे किया?
देखिए, विश्वास तो उनके लिए बिजनेस का एक टूल था, एक हथियार, और वो इसे इस्तेमाल करने में माहिर थे। उन्होंने लोगों की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझा था।
कैसे?
वो जानते थे कि अमीर लोग भी, खासकर वो जिन्हें शायद पैसा विरासत में मिला हो या जिन्होंने खुद कमाया हो, अपने पैसों के फैसलों को लेकर कई बार उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते, थोड़े इनसिक्योर होते हैं।
अच्छा,
इसीलिए उन्होंने अपने फंड को इतना एक्सक्लूसिव, इतना खास बना दिया, जैसे हर किसी को एंट्री नहीं मिलती, वो कई लोगों को मना कर देते थे। इससे क्या होता था कि जिन लोगों को एंट्री मिल जाती थी उन्हें लगता था कि वो कितने खास हैं।
हाँ, ये तो एक मनोवैज्ञानिक चाल है।
बिल्कुल, वो असल में रिटर्न नहीं बेच रहे थे, वो बर्नी मैडोफ द्वारा मैनेज किए जाने का सौभाग्य बेच रहे थे, एक स्टेटस सिंबल।
कमाल है। और सिस्टम के बारे में, नियमों के बारे में उनकी क्या सोच थी? क्या उन्हें लगता था कि वो इन सबसे ऊपर हैं?
ऐसा ही लगता है। उनमें सिस्टम को लेकर, रेगुलेशंस को लेकर एक तरह का तिरस्कार या अनदेखी का भाव था। उन्हें लगता था कि नियम तो बस बाधाएं हैं जिन्हें टाला जा सकता है, मोड़ा जा सकता है।
और अपनी वो नैसडैक वाली प्रतिष्ठा का इस्तेमाल किया उन्होंने।
हाँ बिल्कुल, अपनी प्रतिष्ठा और अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उन्होंने कई बार रेगुलेटर्स जैसे SEC को चकमा दिया। SEC ने कई बार उनकी फर्म की जांच की, लेकिन वो हर बार उन्हें बहकाने में कामयाब रहे। शायद उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि वो अपने फलती या नाकामी मानी नहीं सकते थे। एक झूठ को छुपाने के लिए उन्हें और बड़े झूठ बोलने पड़े, और ये जाल बस फैलता ही गया जब तक कि वो टूट नहीं गया।
और ये कितनी बड़ी आयरनी है, कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस परिवार को वो शायद अपने तरीके से सुरक्षित और खुशहाल रखना चाहते थे,
हाँ
आखिर में उनके कामों ने उसी परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया।
हाँ, ये बहुत दुखद पहलू है इस कहानी का। उनके अपराध ने सिर्फ हजारों निवेशकों को ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि उनके अपने परिवार पर भी एक तरह से कहर ढाया। विश्वासघात का असर बहुत गहरा था।
अगर हम मैडोफ के जीवन को एक टाइमलाइन पर देखें, तो ऐसे कौन से मोड़ थे, कौन से टर्निंग पॉइंट्स थे जिन्होंने उनकी कहानी की दिशा पूरी तरह बदल दी? मतलब तीन सबसे अहम मोड़ क्या रहे होंगे?
मेरे ख्याल से जो पहला और शायद सबसे अहम मोड़ था, वो था पोंजी स्कीम शुरू करने का फैसला।
हाँ, वो पल जब उन्होंने पहली बार जानबूझकर क्लाइंट के पैसे का गलत इस्तेमाल किया।
हाँ बिल्कुल, जो शायद 1990 के दशक की शुरुआत में हुआ, जब उन्होंने, जैसा हमने बात की, शायद ट्रेडिंग के घाटे को छुपाने के लिए क्लाइंट के फंड्स को यूज किया।
ये निर्णायक क्यों था?
ये इसलिए निर्णायक था क्योंकि इस एक कदम ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। ये गणितीय जाल था। पोंजी स्कीम को जिंदा रखने के लिए लगातार नए पैसों की जरूरत होती है, पुराने वादे निभाने के लिए। इस एक फैसले ने उन्हें एक, हाँ ठीक है, उस वक्त शायद थोड़े घाटे में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक लेजिटिमेट कारोबारी से एक अपराधी बना दिया। अब उन्हें अपनी इज्जत, अपनी आज़ादी, सब कुछ बचाने के लिए लगातार झूठ बोलना था।
बात समझ आती है। दूसरा अहम मोड़ क्या था?
दूसरा मोड़ मेरे हिसाब से था नैसडैक का चेयरमैन बनना। वो 1990, 91 और 93 में चेयरमैन रहे। ये वॉल स्ट्रीट में आप समझिए सम्मान और भरोसे की पराकाष्ठा थी।
इसने तो उन्हें एक तरह का सुरक्षा कवच दे दिया होगा ना, जैसे कोई शकी ना कर पाए।
बिल्कुल, परफेक्ट कवच। इससे उनकी विश्वसनीयता आसमान पर पहुंच गई। कौन सोच सकता था कि जो आदमी खुद स्टॉक एक्सचेंज को चला रहा है, जो इंडस्ट्री के नियमों को बनाने में मदद कर रहा है, वो पर्दे के पीछे इतना बड़ा गोलमाल कर रहा होगा। इसने रेगुलेटर्स के लिए, निवेशकों के लिए, मीडिया के लिए, सबके लिए उन पर शक करना लगभग नामुमकिन बना दिया। ये उनके दोहरे जीवन का शिखर था, बाहर से सबसे सम्मानित व्यक्ति और अंदर से सबसे बड़ा धोखेबाज।
और तीसरा और आखिरी मोड़, जाहिर है जब ये सब खत्म हुआ।
हाँ, तीसरा और अंतिम मोड़ था 2008 का वित्तीय संकट, और उसके बाद उनका अपने बेटों के सामने किया गया कबूलनामा। दिसंबर 2008 में, जब बाजार की गिरावट ने पोंजी स्कीम का टिकना नामुमकिन कर दिया और वो पैसे लौटा नहीं पाए,
और उन्हें सच बोलना पड़ा।
हाँ, उन्हें सच उगलना पड़ा, और इस एक पल ने, इस कबूलनामे ने सब कुछ खत्म कर दिया। उनकी आजादी गई, उनकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई,
और उनका परिवार,
और उनका परिवार पूरी तरह बिखर गया। जैसा हमने बात की, बेटों ने उन्हें अधिकारियों को सौंपा। 2 साल बाद उनके बेटे मार्क ने खुदकुशी कर ली। दूसरे बेटे एंड्रू की कुछ साल बाद कैंसर से मौत हो गई, और उनका परिवार मानता था कि इस घोटाले से मिले भयानक तनाव का इसमें बड़ा हाथ था। पत्नी रूथ को समाज ने लगभग बहिष्कृत कर दिया। तो दशकों का जो भ्रम उन्होंने बनाया था, वो एक झटके में न सिर्फ टूटा, बल्कि अपने पीछे तबाही छोड़ गया।
मैडोफ की कहानी सुनकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इससे हम इंसानों के बारे में, हमारे समाज के बारे में क्या सीख सकते हैं, क्या सबक मिलते हैं?
पहला सबक तो शायद यही दिमाग में आता है कि एक छोटा सा झूठ भी कैसे बढ़ते बढ़ते एक राक्षस बन सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। शायद मैडोफ ने भी जब पहली बार गलती की होगी तो सोचा होगा कि ये बस कुछ वक्त की बात है, वो इसे ठीक कर लेंगे। लेकिन एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा, फिर तीसरे झूठ का सहारा लेना पड़ा, और आखिर में वो खुद ही उस झूठ के जाल में ऐसे फंसे कि निकलना नामुमकिन हो गया। यह हमें दिखाता है कि ईमानदारी से जरा सा भी भटकना कितना खतरनाक हो सकता है। पहला गलत कदम ही सबसे भारी होता है।
और उनके करिश्मे का क्या, उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि लोग आसानी से यकीन कर लेते थे।
ये भी एक बहुत अहम सबक है। मेडोफ का जो चार्म था, उनका लोगों को अपनापन महसूस कराने का जो हुनर था, वही उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया। लोग उन पर इसलिए भरोसा करते थे क्योंकि वो बनी मेडोफ थे, वो उन्हें पसंद करते थे, ना कि इसलिए कि उन्होंने उनकी बातों की, उनके रिटर्न्स की गहराई से पड़ताल की थी।
हाँ,
तो ये हमें सिखाता है कि करिश्मे के पीछे की असलियत देखना कितना जरूरी है। बिना नैतिकता के अच्छे गुण भी, जैसे कि बहुत आकर्षक होना या बहुत बुद्धिमान होना, कितने विनाशकारी साबित हो सकते हैं। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना लगे।
ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि बाहरी चमकता-मक या ऊंचे पद के बजाय असलियत, पारदर्शिता, सब्सटेंस कितना जरूरी है। मेडोफ की इज्जत, उनका रुतबा बहुत ऊंचा था, पर वह सब खोखला था। और ये हमें सिखाता है कि हमें स्थापित हस्तियों और संस्थानों पर भी सवाल उठाने से हिचकिचाना नहीं चाहिए।
हाँ, बिल्कुल।
सिर्फ इसलिए कि कोई बहुत बड़ा नाम है या कोई संस्था बहुत पुरानी और सम्मानित है, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया जाए। वो पुरानी कहावत है ना, अगर कोई चीज सच होने के लिए जरूरत से ज्यादा अच्छी लगे तो शायद वो सच नहीं है। मेडोफ के मामले में ये बिल्कुल फिट बैठती है। उनके रिटर्न्स इतने लगातार अच्छे थे कि वो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगते थे।
बिल्कुल सही कहा। और शायद सबसे बड़ा, सबसे गहरा सबक भरोसे के बारे में है। देखिए, भरोसा ही हमारे समाज की, हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है। हम बैंक में पैसा रखते हैं भरोसे पर, हम निवेश करते हैं भरोसे पर, हम रिश्ते बनाते हैं भरोसे पर। मेडोफ ने दिखाया कि यह भरोसा कितना नाजुक होता है, और जब यह टूटता है तो उसका असर कितना भयानक और दूर तक जाता है।
सही बात है।
उनका अपराध सिर्फ पैसों का नहीं था, ये इंसानी रिश्तों पर, समाज के पूरे ताने बाने पर एक हमला था। उन्होंने ना सिर्फ लोगों की जिंदगी भर की कमाई छीन ली, बल्कि दुनिया पर, सिस्टम पर, यहां तक कि इंसानियत पर उनके भरोसों को भी तोड़ दिया।
और मेडोफ परिवार की जो त्रासदी हुई, उनके बेटों की मौत, पत्नी का अकेलापन और सामाजिक बहिष्कार, वो ये बहुत दर्दनाक तरीके से दिखाता है कि ऐसे गुनाहों की इंसानी कीमत कितनी ज्यादा होती है। ये कोई विक्टिमलेस क्राइम नहीं था। इसके शिकार सिर्फ निवेशक ही नहीं थे, उनका अपना परिवार भी था। इसके निशान बहुत गहरे और शायद कभी ना मिटने वाले हैं।
बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में अगर हमें तीन मुख्य बातें, तीन टेकअवेज निकालने हो, तो वो क्या होंगे?
हाँ बिल्कुल, क्या तीन बातें हम खास तौर पर याद रख सकते हैं?
पहली है मेरे हिसाब से एक भावनात्मक सबक, इमोशनल इनसाइट। वो ये कि धोखा और विश्वासघात पारिवारिक रिश्तों को कितनी गहराई तक और हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। मेडोफ का अपने बेटों के सामने सच को बोलना, फिर उनका बेटों द्वारा ही पकड़वाया जाना, मार्क की खुदकुशी, एंड्रू की बीमारी और मौत, रूथ का अकेलापन, ये सब दिखाता है कि झूठ का जहर कैसे सबसे करीबी रिश्तों को भी खत्म कर सकता है। ये बहुत ही मार्मिक है।
हाँ, ये दिल दहला देने वाला है। दूसरी बात?
दूसरी है एक बौद्धिक समझ, इंटेलेक्चुअल इनसाइट, कि मेडोफ की असली जीनियस या प्रतिभा मुश्किल फाइनेंशियल तिकड़मों में नहीं थी। वो तो एक साधारण पोंजी स्कीम चला रहे थे। उनकी असली कला थी भरोसा बेचने में और लोगों की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाने में।
अच्छा, मतलब घोटाला सिंपल था पर उसे छुपाने का तरीका जटिल था।
हाँ, पोंजी स्कीम चलाना गणितीय रूप से सीधा है, लेकिन मुश्किल है सालों तक उस भ्रम को बनाए रखना, उस इज्जत का नकाब पहने रखना, वो खास होने का एहसास दिलाते रहना। उन्होंने लोगों की असुरक्षा, उनके लालच, उनके स्टेटस की चाह और हाँ, सिस्टम की अनदेखी का बखूबी इस्तेमाल किया। असली जादूगरी धोखे को छुपाने में थी।
और तीसरी और आखिरी सीख?
तीसरी है एक सार्वभौमिक सीख, यूनिवर्सल इनसाइट, कि छोटे से छोटा नैतिक समझौता भी अगर उसे बढ़ने दिया जाए तो वो अनियंत्रित होकर विनाशकारी नतीजे ला सकता है। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी एक बार खो जाए तो उसे वापस पाना लगभग नामुमकिन होता है। मेडोफ की कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि शक करना, सवाल पूछना, पारदर्शिता की मांग करना कितना जरूरी है, खासकर जब बात हमारे अपने भविष्य की, हमारे भरोसे की और हमारे पैसों की हो। और हाँ, वो कहावत हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर कुछ सच होने के लिए बहुत अच्छा लगे तो शायद वो सच नहीं है। थोड़ा रुकिए, सोचिए और फिर फैसला लीजिए।
वाकई एक ऐसी कहानी जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। भरोसे की अहमियत, धोखे का अंजाम और सिस्टम पर सवाल उठाने की जरूरत, बहुत कुछ है सीखने के लिए।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक तरफ फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।